अब और बड़े होने के बाद में एक बार की बात है कि कुश वंश में उत्पन्न होने वाले विश्वामित्र जी महाराज, जिनको कौशिक बोलते हैं, कुश वंश में पैदा हुए थे ये। तो विश्वामित्र जी महाराज जो अयोध्या आए, अब विश्वामित्र जी की तपस्या सारे जगत में बड़ी प्रसिद्ध। असल में आए तो थे वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। उनको मालूम था कि भगवान माया से अवतार लिए दर्शन करने जाए। दशरथ जी महाराज ने उनका क्या स्वागत किया है, खूब बढ़िया उनका स्वागत किया और स्वागत करके उनको बैठाया, भोजन वगैरह करवाया। और फिर राजा दशरथ ने उनसे पूछा, महाराज आप जैसे महापुरुषों के पधारने से हमारा सौभाग्य बढ़ जाता है। हम लोग सोचते हैं कि देखो हमारे को दर्शन देने के लिए ऐसे महात्मा पुरुष आए, हमने पिछले जन्म में कोई बड़ा भारी पुण्य किया था, आप हमारी साक्षात संपत्ति हो। संत महापुरुष होते हैं ना, वो हमारी संपत्ति होते हैं, आप हमारी संपत्तियां हो। महाराज क्या आज्ञा है मेरे लिए, आप कैसे पधारे। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जहां कहीं कोई अधर्म होता है, जहां कहीं अन्याय होता है, उसका आप बड़े शक्ति से विरोध करते हैं, और आप जैसे धर्मात्मा राजा के द्वारा ही यहां धर्म की रक्षा होती है, तो मैं जहां भी यज्ञ करता हूं वहां पर यज्ञ के समय में मैं देवताओं को पितरों को प्रसन्न करना चाहता हूं, लेकिन वहां मारीच और सुबाऊ नाम के राक्षस अपने और राक्षसों के साथ आते हैं और यज्ञ में बाधा डाल देते हैं, हमारा यज्ञ पूरा करने नहीं देते, न देवताओं को हिस्सा मिलता है न पितरों को मिल पाता है, बहुत कष्ट में हूं मैं। इसलिए और तो कुछ नहीं, मैं आपसे राम को चाहता हूं, आप बड़े भाई राम को मेरे साथ भेज दीजिए, लक्ष्मण जी उनके साथ चले तो और भी बढ़िया बात है, राम और लक्ष्मण मेरे साथ रहे, मैं अपने यज्ञ में इनको ले जाना चाहता हूं और इनके द्वारा मैं यज्ञ की रक्षा चाहता हूं। आप वशिष्ठ जी से विचार विमर्श कर लीजिए, यदि आपको अच्छा लगे, यदि आपके चित्त में प्रसन्नता हो, यदि आप किसी प्रकार का कोई विचार न करें, तो आप हमें राम को दे दीजिए। दशरथ जी का तो मुंह उतर गया। दशरथ जी महाराज एकांत में वशिष्ठ जी को बुलाए और बुला करके दूसरे कमरे में बैठ करके, कक्ष में बैठ करके बात करने लगे कि महाराज गुरुदेव क्या करूं, बड़ी आफत आ गई, इधर जाऊं तो कुआ, इधर जाऊं तो खाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको पता ही है कि मैं पुत्र के लिए कितना रोया, तड़फा, बिलखा, क्या क्या मैंने काम नहीं किया। अब इस उम्र में मुझे पुत्र मिले हैं और चारों पुत्रों से मैं बड़ा खुश हूं, उसमें राम तो मुझे अति बल्लभ है, बहुत ही ज्यादा प्रिय लगता है, बहुत प्यारा है। यदि राम यहां से थोड़ी देर के लिए भी ओझल हो जाता है तो मैं बेचैन हो जाता हूं। विश्वामित्र जी तो अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और वो भी युद्ध करने के लिए, राक्षसों से युद्ध करने के लिए, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अब दे दूं तो मेरा जीना नहीं होगा, न देऊं तो विश्वामित्र जी के शाप का डर लगता है, मैं तो ऐसे भंवर जाल में फंस गया महाराज, मुझे निकालो गुरुदेव। गुरु ऐसे ही तो समय में काम आते हैं, और गुरु क्या होते हैं, गुरु है वो क्या करते हैं, हमारे भ्रमर जाल में फंसते हैं तब गुरु जी ही हमको ज्ञान रूपी नौका में बैठाते हैं, संसार में उलझ जाए तो क्या करें, हम समस्या हो गई। ऐसे समय में वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, महाराज घबराओ मत, मैं आपको देवगुप्त बात बताता हूं, गोपनीयम प्रयत्नत है, हर किसी को आप बताना नहीं। आपने राम को क्या समझ रखा है कि राम तो एक मेरा बेटा है, कि ना ना बेटा नहीं है। देखो राम जी ने अपना रूप कौशल्या जी को दिखाया, दशरथ जी को नहीं दिखाया। दशरथ जी को भी एकांत में चतुर्भुज रूप दिखा सकते थे, नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया जी? कि दशरथ जी है ये इतने प्रेमी हैं भगवान के कि यदि इनको चतुर्भुज रूप दिखा दिया जाता तो फिर दशरथ जी पुत्र भाव से इनमें प्रेम कर ही नहीं सकते थे, वो भगवत भाव से प्रेम करते। और आराधना क्या थी इनकी? पुत्र भाव से भजने की। तो पुत्र भाव से भजने की आराधना थी, उसमें बाधा पड़ती। और भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् भी हम। इसलिए भगवान ने उनको जो है चतुर्भुज रूप से दर्शन नहीं कराए। वसुदेव और देवकी उन दोनों को चतुर्भुज रूप दर्शन कराया भगवान ने, दोनों को। क्यों कराया? कि पुत्र भाव से उपासना होते हुए भी इनके अंदर दोनों में ज्ञान की ज्ञान भी था। इसीलिए आप देखो दशम स्कंद में जहां भगवान का अवतार होता है वहां वसुदेव और देवकी दोनों निराकार भगवान की स्तुति करते हैं, वहां साकार भगवान की स्तुति नहीं करते हैं। देखो आपका शंख चक्र गदा पद्म कितना अच्छा लगता है, आप किरीट कुंडल से कितने अच्छे लगते हो, आपकी चतुर्भुज बाहों में ये चारों आयुध बड़े अच्छे लगते हैं, वनमाला बड़ी अच्छी लगती है, कौस्तुभ मणि अच्छी, एक शब्द नहीं बोले दोनों। निराकार निरंजन अद्वैय परब्रह्म परमात्मा की स्तुति की है वहां। लेकिन यहां कौशल्या जी है, इनके अंदर भक्ति के साथ में ज्ञान है, और हमारे दशरथ जी महाराज तो केवल प्रेम ही प्रेम रहे, ये प्रेम है। ऐसे ही जनक जी के यहां जनक जी है, उनके अंदर भक्ति भी है तो ज्ञान है, लेकिन सुनैना जी है उनके अंदर केवल भक्ति है, केवल भक्ति। थोड़ा सा सीता का वियोग सह नहीं सकते, थोड़ा सा भी राम जी का वियोग हमारे दशरथ जी सह नहीं सकते। तो वो दशरथ जी को याद दिलाते हैं कि राम कौन है मालूम है? कि मैं तो नहीं जानता। रामो न मानुष है, राम मनुष्य नहीं है, साक्षात सनातन परमात्मा है दशरथ जी महाराज। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए ब्रह्मा जी ने उनके पास जाकर अपने इनके चरणों में अपना मुकुट रगड़ा है, नाक रगड़ी है और प्रार्थना की है, तब वे यहां आपको और कौशल्या जी को पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण कराने के लिए आए हैं। आपको अपने विषय में कुछ मालूम है क्या? कि मैं तो नहीं जानता कि आप कश्यप जी हो और कौशल्या जी अदिति है। आप दोनों ने बड़ा विलक्षण तप किया था, उस तप तपस्या के प्रभाव से ये आपके दोनों बेटा बनकर आए, ये चारों बेटा बनकर के आए हैं। वो एक ही भगवान चार शक्तियों में आपके पास आए हैं। आपने जब खूब तपस्या की तो उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, तब आपने कहा था कि हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि त्वम में पुत्रो भवेति च, तुम हमारे पुत्र हो जाओ। तो वे तुम्हारे यहां पुत्र होने होकर के आए हैं। वो राम ही राम है, राम ही लक्ष्मण है, राम ही भरत है और राम ही शत्रुघ्न है। और देखो भगवान राम है ना, भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु को देखिए, सदाई भगवान विष्णु यो शेषनाग के साथ चिपटे रहते हैं। तो शेषनाग है, वो लक्ष्मण बनकर के आया है और भगवान के हाथ में जो है चक्र है, और भगवान के हाथ में शंख है, इस हाथ में शंख चक्र है। तो शंख है वो भरत जी है, चक्र है वो शत्रुघ्न है। ये सब भगवान से संपृक्त है, भगवान से लगे हुए हैं। इसलिए भगवान को छोड़कर अब भगवान देखो विष्णु यहां आ जाए तो शेषनाग वहां अकेला कैसे रहेगा? रह ही नहीं सकता। शंख भगवान के हाथ से अलग हो ही नहीं सकता, चक्र कभी अलग हो ही नहीं सकता। तो फिर गुरुदेव उनके वहां तो सदा लक्ष्मी जी तो रहती है कि बस 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 सही निशाने पर आ गए आप दशरथ जी महाराज। आपको बात बताए, ये लक्ष्मी जी सीता जी है, सीता जी लक्ष्मी जी के रूप में जनक जी के वहां पर है, उनके साथ विश्वामित्र जी मेल कराने के लिए आए, ये तो फालतू की बात है। दूसरी बात है कि हमारे यज्ञ में बाधा पड़े, ये तो बहाना है, सीधा थोड़ी कहेंगे आपसे कि सीता के साथ संबंध कराना है। ये महापुरुषों की वाणी अलग होती है महाराज। वो कहते हैं हमारे यज्ञ में बाधा हो रही है, वो यज्ञ में बाधा ये हटा नहीं सकते क्या? पर नहीं, उनको तो राम और सीता का मिलन कराना है। राम और सीता का मिलन तो भगवान के भक्त लोग ही तो करा पाएंगे ना, इसलिए आप इनको साथ में भेज दीजिए। योग माया पी सेते थी जाता जनक नंदिनी, विश्वामित्रोपि रामाय ताम योजितुम आगत है। पर ये बात बहुत गुप्त है, आपका हृदय घबरा गया ना, घबराहट से भर गया, इसलिए मैंने आपको कहा आप किसी से ये बात मत कहना। दशरथ जी महाराज बड़े खुश हो गए और दशरथ जी महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बड़े कृतकृत्य हो गए, राम को लक्ष्मण को बुलाया, बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी के साथ इनको भेज दिया, खूब खूब उनको आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद दे करके उनको कहा कि देखो बेटा, गुरुजनों की सेवा करते रहना हो, गुरु सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। वो धनुष बाण वगैरह लेकर के रवाना हुए। मार्ग में विश्वामित्र जी महाराज ने उनको बला और अति बला नाम की विद्या प्रदान की। ये बला और अबला, बला और अति बला क्या होती है? इससे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। आप देखिए कि भगवान लंका में रहे तो वहां कहां भोजन किए होंगे। ये बला और अति बला है ना, भूख प्यास और दूसरे कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती है, उनसे उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। भगवान का तो श्री विग्रह ही है, ये लोक हित के लिए बताई है। लोक हित के लिए और जो है आलोक हित के लिए उन्होंने बला और अति बला विद्या का राम जी को प्रदान करके जो है ये लोक संग्रह के लिए किया है। लोक संग्रह के लिए, लोक हित कह दो, लोक संग्रह कह दो। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं लोक संग्रह के लिए काम करता हूं, अर्थात लोगों को उस विद्या के अनुसार ढालने के लिए मैं आदर्श उपस्थित करता हूं, मेरे पर कोई लागू नहीं होता। तो बला और अति बला नाम की दो विद्या दी। ययोर ग्रहण मात्रेण क्षुत क्षामादि न जायते, और भी अनेक प्रकार के शस्त्र दिए। फिर नौका पार करके, नैया नदी पार करके जंगल में चले गए, घनघोर जंगल। विश्वामित्र जी ने कहा सावधान। क्या महाराज? ये ताटक वन है, इसमें ताड़का रहती है, सावधान रहना। इतने में ताड़का आई तो भगवान को विश्वामित्र जी ने कहा देखो वो ताड़का है, डरना नहीं। इस बात से डरना नहीं का अर्थ, ये स्त्री है, मैं इसके ऊपर कैसे बाण मारूं, डरना नहीं, तुम बाण मारना, ये राक्षसी बहुत कष्ट देने वाली है। इस प्रकार से जो है भगवान ने भगवान को पहले से ही सावधान कर दिया और जो है ताड़का आई, भगवान ने उसके छाती में बाण मारा। बाण लगते ही वो तो बहुत सुंदर स्त्री बन गई ताड़का, ताड़का बहुत सुंदर स्त्री बन गई। देखो एक आदमी ने पूछा कि ताड़का इतनी सुंदर स्त्री बन गई तो पूतना क्यों नहीं बनी, पूतना क्यों नहीं बनी? अरे पूतना तो पहले से ही ऐसी सुंदर स्त्री बनकर आई थी, गोपियों ने तो देखा कि ये लक्ष्मी आ गई स्वर्ग से, ये विष्णु आए तो ये स्वर्ग से लक्ष्मी आ गई। और फिर जो है पूतना पहले से सुंदर बनकर के नहीं आई होती तो शायद उसका क्या रूप होता। असल में पूतना का भगवान ने मोक्ष किया है, और ये ताड़का थी, ये यक्षिणी थी और बहुत सुंदर स्वरूप में हो गई, सर्वाभरण विभूषिता हो गई और वो अपने पिशाच योनि से मुक्त हो गई। पिशाच योनि से वो वापिस यक्ष योनि में चली गई, मुक्ति नहीं हुई, पूतना की मुक्ति हो गई। अस्तु, अलग अलग बातें हैं। फिर उसने राम जी को परिक्रमा की, प्रणाम किया और वो जो है ताड़का वहां से चली गई। फिर जो है विश्वामित्र जी बड़े खुश हो गए, कहने लगे राम श्री गणेश ही तुम्हारा विजय से चालू हुआ है, अब तुम्हारे जीवन में बड़े संघर्ष के दिन आएंगे और तुम इसी प्रकार से विजय को प्राप्त होते रहोगे। आगे चलते चलते सिद्धाश्रम पहुंचे। सिद्धाश्रम पहुंचने पर भगवान राम ने कहा कि ये कौन सा आश्रम है कि बस यही हमारा आश्रम है, ये तो बड़ा सुंदर आश्रम है, यहां तो राक्षसों का प्रवेश संभव ही नहीं है। हाँ इसमें प्रवेश संभव नहीं होना चाहिए, पर आते हैं, यहां बड़े बड़े सिद्ध लोग चारण लोग ये आते हैं, इसलिए इसका नाम सिद्धाश्रम है, परंतु यहां राक्षस लोग हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं। तो ठीक है गुरुदेव, आप यज्ञ कीजिए, हम यज्ञ की रक्षा करते हैं। वो किस समय आएंगे? वो ठीक मध्यान्ह में आते हैं, मध्यान्ह में राक्षस लोग आते हैं। तो भगवान यूं खड़े रहे, यज्ञ हो रहा था, तो ठीक मध्यान्ह के अंदर ये मारीच और सुबाहु खूब जो है उद्दंडता से हा हा हू करते हुए आए और गंदी गंदी वस्तुएं वहां पर डालने लगे, खून है, हड्डी है, मांस है। भगवान ने अपने हाथ में धनुष लिया, एक धनुष को कस करके जो है बाण को कस करके कानों तक कस करके उसको छोड़ा, तो एक के तो छाती में लगा वो तो वहीं पर खत्म हो गया और दूसरे के लगा तो वो 100 योजन दूर चला गया। और खूब आनंद से यज्ञ हुआ तो देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी और उन्होंने धुंद भी बजाई। सिद्ध चारण गंधर्व सब बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे इस क्षेत्र को आपने एकदम पवित्र बना दिया। विश्वामित्र जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। विश्वामित्र जी लिए उन दोनों को गोद में रखा कि बेटा मेरी विद्या तुमने सफल कर दी। अब 2-3 दिन वहां रहे, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि वहां पर बैठे, उनसे भगवान ने कई प्रकार की कथाएं सुनी। 4th दिन की बात है कि विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम बड़े शूरवीर हो, तुमको बड़ा अच्छा धनुष चलाना आता है। इस संसार में बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर कोई उत्तम धनुष मिलेंगे। एक धनुष भगवान शंकर का है, वो जनक जी के वहां पर है। वो धनुष ऐसा दिव्य है, इतना विचित्र है, ऐसे तो मणियों से बना हुआ है, बहुमूल्य है, और भगवान शंकर चलाते थे उस धनुष को। अपने क्या दर्शन करियाओ, उस धनुष का दर्शन करने के लिए अपने चले, तुम्हारा मन हो तो, कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो जरूर चलेंगे, ये चलो। वहां से रवाना हुए और चलते चलते गौतमी के आश्रम में आए, अहिल्या के आश्रम में आए। वहां आने पर राम जी ने पूछा कि गुरुदेव इस आश्रम में खूब तो फल फूल लगे हुए हैं, पर एक भी पशु नहीं, एक भी पक्षी नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई जंतु नहीं, ये फल फूल वगैरह किसके काम आते होंगे? और जहां फल फूल होते हैं वहां तो पक्षियों का झुंड यूं झूमा रहता है। वृक्ष की भी शोभा होती है, फलों की भी शोभा होती है, बगीचे की भी ऐसी शोभा होती है, यहां तो कोई है ही नहीं, तो ये ऐसा कैसा आश्रम है? ये कस्येतद आश्रमम, ये किसका आश्रम है? तो विश्वामित्र जी कहने लगे राम तुम्हारे प्रश्न करने से मेरा हृदय गदगद हुआ है। भगवान ने कहा कि इस आश्रम में आने पर मेरे मन में भी बड़ी खुशी सी पैदा हो रही, आह्लाद ही थी मेरे चेतन, बताओ ये किसका आश्रम है? विश्वामित्र जी कहने लगे कि देखो राम, पहले गौतम नाम के ऋषि थे, वे गौतम नाम के ऋषि बड़े धर्मात्मा ऋषि थे, तपस्वी थे। देखो इसमें कुछ कथा आती है ना, ऐसी ऐसी कथाएं, उन कथाओं का थोड़ा सा तात्पर्य समझना चाहिए। लोग कई बार ऐसी जो कथाएं आती है उन तात्पर्य समझे बिना चाहे जैसे टोरा मार देते हैं, ऐसे नहीं, इनका तात्पर्य गहराई से समझना चाहिए। कहते हैं उनकी एक पत्नी थी अहिल्या, अहिल्या थी ब्रह्मा जी की बेटी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरी बेटी को मैं उसको दूं जो ब्रह्म तेज से समन्वित हो। ब्रह्म तेज अर्थात जो मेरे अंदर तपस्या की शक्ति है, ऐसी शक्ति मेरी सृष्टि में किसकी है? तो देखा एक गौतम की है। तो अपनी कन्या गौतम ऋषि को उन्होंने दी थी। बड़ी सुंदर थी, बड़ी श्रेष्ठ थी। एक बार इंद्र है उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के वहां आया, गौतम ऋषि का ही उसने रूप बना लिया और बिचारी को अहिल्या को कुछ पता नहीं था। इतने में ही जो है ये गौतम ऋषि आए, उन्होंने अपने ही रूप वाले इंद्र को देख करके जो है उन्होंने उसको शाप दे दिया। तब वो वहां अब वो क्या हुआ कि वो पहले पूछे कि तू कौन है, सच्ची सच्ची बता देना मेरा रूप बनाकर कौन आया है, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा, नहीं तो शाप दे दूंगा। सच्ची बता देगा तो तुझे शाप ही दूंगा, और नहीं बताएगा और झूठ बोलेगा तो तुझे मैं भस्म कर दूंगा। तब इंद्र उनके चरणों में गिर गया, कहने लगा मैं तो देवराज इंद्र हूं, आप मेरे को क्षमा करो, हमसे त्रुटि हो गई, कृतम जुगुप्सितम कर्म, मेरे से मैंने बहुत घृणास्पद कार्य किया, मैं आपसे बार बार क्षमा चाहता हूं। तो गौतम ऋषि ने उसको जो है क्षमा तो कर दिया लेकिन शाप भी दे दिया। अब वो तो वहां से चला गया। अब जो है उन्होंने जाकर के अहिल्या को शाप दिया कि अहिल्या ने कहा महाराज मेरा क्या कसूर, मैं तो समझ नहीं गया। नहीं, तुमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके अंदर एक दिव्य शक्ति होती है, चाहे उसका पति किसी भी रूप को धारण करके, पति का रूप धारण के चाहे कोई आ जाए, वो पहचान लेती है कि मेरे पति हैं कि नहीं। तुम्हारी आराधना में तुमने कहीं कहीं त्रुटि की है, तुम्हें क्यों नहीं पता चला कि जो है ये मेरा ही रूप बना करके आया है? क्यों नहीं पता चला? तुम्हारी तपस्या में कोई कमी रह गई, जाओ तुम पत्थर बन जाओ, शिला बना दी। अब देखो लोग कहेंगे देखो इंद्र है, इंद्र ने भी कितना बड़ा अपराध किया, कि ये अपराध तो देवता लोग भी करते हैं तो दूसरे करें तो उसमें बात ही क्या है, ऐसा ऐसा प्रश्न करते हैं लोग। ये बहुत ही जो है बेसमझी की बात है। पहली बात तो यह है कि देव योनि होती है वो मनुष्य योनि से घटिया योनि होती है। देवता मनुष्य से घटिया दर्जे के होते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाग हुआ तो पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति जिन्ना हुआ। वो जिन्ना जब मरा तब सेठ जी के पास खबर देने के लिए आया कि सेठ जी सेठ जी सेठ जी, सत्संग चल रहा था, एक बड़ी खुशखबरी सुनाया, हम रेडिया सुन करके आए हैं। कि क्या भाई क्या खुशखबरी है? वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति जिन्ना मर गया, बहुत खुशखबरी है। सेठ जी ने कहा देखो किसी की भी मृत्यु पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। कि क्यों महाराज? शास्त्रों में तो देवता लोग बड़े खुश होते थे, बड़े पुष्प बरसाते थे, बड़े फूलों की वर्षा करते थे, धुंधमिया मजाते थे, रावण आदि मरते थे, कितना कितना हुआ, आप ऐसा क्यों कहते हैं? सेठ जी ने कहा देखो वो देवता थे, देवता मनुष्य नहीं थे। तो देवता तो मनुष्यों से बड़े होते हैं कि बिल्कुल नहीं होते? मनुष्य योनि है ये साधन भजन की योनि है, देव योनि है भोग योनि है। तो भोग योनि होती है वो छोटी होती है, साधन योनि है ये, साधन भजन करने के लिए आए है ना। तो सब ठीक बात है, साधन भजन करने के लिए आए। पहली बात तो इंद्र है वो देवता है और गौतम ऋषि है ये मनुष्य है, अहिल्या है ये मनुष्य है। मनुष्य योनि माने स्त्री पुरुष दोनों ही मनुष्य में आते। तो गौतम ऋषि ने कहा कि तुम मनुष्य योनि में हो और तुम तपस्या करती हो तो तुमको तो कम से कम ये विचार रखना चाहिए कि छल हो रहा है, हम तुमको शाप देते हैं कि जाओ तुम पत्थर की शिला बनो। हजारों वर्षों तक यहां रहो लेकिन तुमको भगवान मिलेंगे, आशीर्वाद भी दिया। जब भगवान त्रेता युग में दशरथ जी के बेटा बनेंगे तब उनके चरणों से तुम्हारा स्पर्श होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इंद्र को नहीं दिया, इंद्र को किसी प्रकार से गौतम ऋषि ने आशीर्वाद नहीं दिया। अब कहते हैं इंद्र से गलती हुई तो इंद्र से, अब इसमें देखो शिक्षाप्रद बात क्या है, इंद्र है वो त्रिलोकी का राजा है लेकिन उससे भी यदि पाप होता है, गलती होती है तो उसको एक सामान्य ऋषि उसको दंड दे सकता है, श्राप दे सकता है, उसको भी कर्म का फल भोगना पड़ता है तो दूसरों को तो भोगना ही पड़ेगा। ये कथाएं इस बात को बताने के लिए है, ये कोई इंद्र की चारित्रिक कमजोरी बताने के लिए नहीं है। ऐसी बातों को हमारे ऋषि मुनि क्यों उजागर करते, ये उजागर करते हैं, ऐसी बात बोलते हैं तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई लोग अपने चरित्र को संभाल के रखें, नहीं तो भाई इसका फल भोगना पड़ेगा। इंद्र भी नहीं टला, दूसरा कौन टलेगा? जिस इंद्र के नीचे कितने देवता रहते हैं, जिस इंद्र के नीचे कितनी शक्तियां रहते हैं, लेकिन पाप करने से वो शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए मनुष्यों को सावधान रहना चाहिए। इसलिए ऐसे प्रसंग है, ये प्रसंग कोई और दूसरे अर्थ में नहीं है। अस्तु, तब तुम जो उन्होंने जो है वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा अहिल्या। तो ये विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई, फिर जो है कहा कि वो गौतम ऋषि हिमालय के वहां चले गए और अहिल्या है वो यहां पर सब प्राणियों से अदृश्य होकर के पत्थर के रूप में है। तब भगवान ने कहा कि भाई वो कहाँ है, वो ये वो पत्थर है अनेक वृक्षों के लताओं में और ये झुरमुट में और सबके बीच में छिपा हुआ है ये, तो आप कृपा करो महाराज। पायस्व मुनेर भार्याम अहिल्याम ब्रह्मण सुताम, ब्रह्मा जी की बेटी है, आप इस अहिल्या को पवित्र कर दीजिए। तो जो है वो हाथ पकड़ के, विश्वामित्र जी हाथ पकड़ करके वहां ले गए उस पत्थर के पास। फिर भगवान ने अपने चरणों से उसका स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वो पत्थर था उसमें एकदम अहिल्या का रूप हुआ है और भगवान के दर्शन की, भगवान है रामो हम, हे देवी मैं राम हूं, दशरथ नंदन राम हूं, तुम्हारे पति ने जो श्राप दिया था उसकी मुक्ति का समय आ गया। आप जो है खूब स्तुति करने लगी, सब चरणों में प्रणाम किया और देखो अब यहां भगवान ने चतुर्भुज रूप से उसको दर्शन दिए। ये चतुर्भुज रूप दर्शन न विश्वामित्र जी ने किए और न लक्ष्मण जी ने किए, ये चतुर्भुज रूप दर्शन केवल अहिल्या ने किए। भगवान किसको कब कैसे दर्शन देते हैं दूसरे आदमी को पता नहीं चलता। अनुमान लगाओ यहां किसी को भगवान दर्शन देंगे तो दूसरे को पता नहीं चल सकता। किसी माता के सामने, किसी पुरुष के सामने भगवान भक्ति से यहां अनुमान लगाओ कि आगे प्रकट हो उसको दर्शन दे देंगे, पास वाले को कुछ की पता नहीं है कि यहां कुछ हुआ है क्या, और वो दर्शन कर सकता है। ऐसी ऐसी भगवत श्री विग्रह के अंदर विशेषता है। ये तो भगवान का संकल्प है भाई, वो भक्त के संकल्प से प्रकट हो गया। अब वो भक्त जाने और भगवान जाने और दूसरा कोई नहीं जानता। तो चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पंकज धारिणम धनुर्बाण धरम, ऐसे भगवान के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन किए तो अहिल्या जी के इतने आंसू आने लगे, उसने बार बार प्रणाम किया और अहिल्या पुलकित होकर के कहने लगी हे प्रभु, कृतार्थ कर दिया प्रभु। कभी कभी ये दुखदायी परिस्थिति बहुत बड़ा सुख देने वाली होती है। मेरे पति ने जब ये कहा कि तुम पत्थर की शिला बन जाओ तो बहुत अंदर से टूट गई, लेकिन मुझे कहा कि तुम्हारा कभी भगवान के चरणों से स्पर्श होगा तो मैंने कहा जाने कब होगा। तो पत्थर की अवस्था में स्पर्श होगा उस समय मेरे पास ज्ञान तो रहेगा नहीं, तो वो इतना मुझे आनंद नहीं मिला, आज आनंद मिला जब आपके दर्शन हुए। ये तो आनंद अभी जो है इस मानव शरीर में ही मिलता है प्रभु। आपके चरणों को तो ब्रह्मा आदि सब पूछते हैं, आप ही के चरणों से भागीरथी गंगा निकली है महाराज, आपने राम रूप धारण करके जो हमको स्वरूप दिखाया है, बस मैं इसी स्वरूप का चिंतन करूंगी, न परान भजिष्य, मैं अब और किसी का भी चिंतन नहीं करूंगी। यत्पाद पंकजरद श्रय श्रुतिभिर्विमृग्य यत्नाभिपंकज भव कमलासनश्च यन्नाम सार रसिको भगवान मुरारी तम च राम चंद्र मनीषम हृदि भावयामि। आपके चरण कमल के रज को नाभि पंकज भवे कमलासनश्च, कमलासन ब्रह्मा जी चाहते हैं, और श्रुतियां ढूंढती रहती है, जो श्रुतियां ब्रह्मा जी से पैदा हुई है वो श्रुतियां भी आपके चरण रज को ढूंढती रहती है, और आपके नाम के रसिक बने हुए शंकर वे हरदम आपके नाम में डूबे ही रहते हैं। ऐसे आप है रामचंद्र महाराज, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, और आपके अवतार चरित्रों को नारद आदि गागा करके संसार को पवित्र करते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रही हूं, क्या आनंद, क्या विलक्षण आपका रूप है महाराज। आपके तो अब कई लीलाएं याद आती हैं, वामन अवतार में आपने एक चरण से सारी पृथ्वी को आक्रांत कर लिया, और स्वर्ग को आपने शरीर से आक्रांत कर लिया, दूसरे चरण से आप उन्हें ऊपर के सब लोक ले लिए, क्या आपके चरणों की विशेषता है महाराज। ये जगत भी आपसे भिन्न नहीं है, आप ही का ही है, आप ही का रूप है। देखो तो जगत और भगवान ये दो नहीं होते, जगत भी भगवान ही है, भगवान का ही रूप है, इसको भगवान का रूप समझना चाहिए, जगत का रूप नहीं समझना चाहिए। जैसे मिट्टी और घड़ा है वो एक है, घड़ा तो नाम है व्यवहार के लिए, ऐसे ही ये मकान ये नाम रख दिया मकान है साहब, ये मकान है, ये दुकान है, ये व्यवहार के लिए नाम होते हैं, क्योंकि वस्तुओं का रूप रंग अलग अलग होने से, अलग अलग नाम रखने से व्यवहार चलेगा, परंतु तत्व एक है। इस संसार में वाच्य वाचक आप ही हो, वाणी के आप अविषय हो, आप तो अनुभूति के विषय हो। किसी आदमी को खूब बढ़िया मीठा खिलाया जाए और कहे भैया बताओ लड्डू कैसा बना, तो वो कहेगा मीठा बना, मीठा नहीं, वो मीठा कैसा है, मीठा कैसे होता है भाई। मीठा तो कह दोगे, पर मीठा को आप बता सकते हो क्या, कि भाई मीठे को इसलिए नहीं बता सकते कि बताने की बात तो ये वाणी का विषय है, और मीठा का ज्ञान करना ये रसना का विषय है, ये जीभ का विषय है, कैसे बताया जाएगा। इसमें दो विषय रहते हैं जीभ में, वाणी भी काम करती है जीभ में, वागिंद्री भी रहती है और रसनेन्द्री भी रहती है, पर दोनों के काम अलग अलग है, एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करते। एको विभासी राम तुम माया बहुरूपया, मैं तुम्हारा ज्यादा बात जानती नहीं, मैं तो इतना ही जानती हूं जैसे आकाश सब जगह व्यापक है, प्रत्येक पदार्थ में आकाश है, ऐसे आप हो संसार में, इतना ही जानती हूं, ज्यादा नहीं जानती। हे महाराज आप कृपा करो, और बस अब मेरे मन में आपके प्रति भक्ति बनी रहे, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं चाहते। बारंबार प्रणाम किया, और फिर जो है भगवान वहां से रवाना हो गए। सुनो पार्वती, अहिल्या ने जो स्तोत्र पढ़ा है, इस स्तोत्र को जो व्यक्ति पढ़ता है, इसका पाठ करता है, उसके अंदर भगवान की भक्ति पैदा होती है, और संसार की यदि कोई कामना भी हो तो वो भी पूरी होती है। सबको पवित्र करने वाला ये स्तोत्र है। सूत जी महाराज आगे कहने लगे कि विश्वामित्रो दतम प्राह। अब देखो आगे की बात बोलते हैं। उसके बाद आगे भगवान रवाना हुए। विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि देखो राम, अब अपने लोग जनकपुरी की तरफ चलते हैं, ये बीच में गंगा जी आ गई, गंगा जी को पार करते हैं। तो गंगा जी के जाकर किनारे खड़े हो गए। उसी समय एक नाविक आया, जो अपने यहां तुलसीकृत रामायण में जो केवट आता है ना, वो केवट प्रसंग तुलसीदास जी ने राम जी को तो वनवास के प्रसंग में काम में लिया। केवट प्रसंग को राम जी के वनवास के समय अध्यात्म रामायण से लिया इन्होंने। क्या केवट की भक्ति तुलसीदास जी महाराज ने बताई है। भाव यहां से है, तुलसीदास जी महाराज तो पैसे ही कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, मैंने नाना पुराण आगम से सम्मत क्वचित अन्य तोपी, कहीं और जगह से भी ले ली। ये और जगह से ले ली का अर्थ क्या हुआ? नाना पुराण निगम आगम से अलग भी कोई होता है क्या? इसमें सब आ गए। क्वचित अन्य तोपी का अर्थ है कुछ मेरी अनुभूति से कहा है। पर बड़े पुरुष अपनी अनुभूति का नाम नहीं लेते हैं। कोई पुरुष, जो महापुरुष जितना ज्यादा भगवान से मिला हुआ होता है, वो उतना ही लोगों में अपने को छिपाता है, वो आत्मगोपन करता है। जैसे दुष्ट व्यक्ति दुष्टता का काम करते भी स्वीकार नहीं करता कि ये पाप मैंने किया है, ऐसे महापुरुष भी लोगों के सामने स्वीकार नहीं कर सकते कि भाई हमको भगवान के दर्शन हो गए, हमने भगवान से ऐसे बातचीत की, हम भगवान को जानते हैं। नहीं करते। पूछा, अच्छे महापुरुषों ने बताया कि भाई ऐसा महापुरुष क्यों नहीं कहते? वो इसलिए नहीं कहते कि ऐसा करने से लोग पाखंडी बन जाएंगे और इससे कोई लाभ नहीं होता। क्या लाभ तो होता है? यदि अच्छे महापुरुष कहते हो कि साहब मैंने भगवान के दर्शन किए, तुम भी कर सकते हो, तो हमारी साधना बढ़ेगी? साधना बढ़ेगी नहीं, साधना बढ़ेगी नहीं, उससे उल्टा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि यदि उस साधक के मन में, जिनके पास वो साधन भजन कर रहा है, उनके प्रति इतना स्वयं का ही विश्वास नहीं है कि भगवान को प्राप्त हुए कि नहीं हुए, तो उनके कहने से कैसे विश्वास हो जाएगा? कहने से कैसे हो जाएगा? वो कहने से नहीं हो पाएगा। ये तो साधक को स्वयं को ही विश्वास करना चाहिए कि ये पहुंचे हुए महापुरुष हैं, इनसे मेरा कल्याण हो सकता है, तब उससे उसको लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अस्तु, तो गोस्वामी जी महाराज ने ये प्रसंग जो लिया है, ये प्रसंग यहां से लिया है। नाविक बोल, अब जो भगवान वहां पर गंगा जी के किनारे खड़े हैं, गुरुदेव भी साथ में, लक्ष्मण जी भी साथ में, तो वहां राम जी महाराज एक नाविक को बोलते हैं, अरे भैया हमको तुम इस पार कर दोगे? उस नाविक ने निषेध कर, ना ना हम नहीं ले जाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं ले जाओगे? क्षालयामि तव पाद पंकजम, नाथ दारु दिशदो कि मंतर, पहले आपके चरण धोऊंगा और चरण धोकर के आपके चरणों की रेखाओं के अंदर मिट्टी के कण है, उन एक एक मिट्टी के कण को उतारूंगा। भगवान ने, क्यों भाई? ना ना, उस चरण रज की बड़ी महिमा हमने अभी देखी ना, यही तो बगीचा है, उसमें आपने अपने चरण रज से एक शिला को स्त्री बना दिया, तो मेरी ये नाव है। मानुषी कर्ण चूर्णम अस्ति ते पादे और इति कथा प्रतीयसी, आपके चरणों की धूली तो स्त्री बनाने वाली है, ऐसा हमने खूब सुना और देखा है, इसलिए हम आपका चरण जो है पहले धोएंगे, बिना चरण धोए नहीं ले जाएंगे। वो चरण धोएंगे और धो करके उसके बाद हम आपको इसलिए भेजेंगे कि हमारी ये नौका खत्म न हो जाए। अब नहीं तो हमारा कुटुंब जो है वो क्या खाएगा? ये हमारी नौका है, ये स्त्री बन जाएगी, तो उस स्त्री को भी खिलाऊं पिलाऊं और फिर साधन मेरा कमाई का यही तो है, और तो कुछ है नहीं, तो भूखे मरूंगा मैं। ऐसी बात सुने भगवान कह ले भाई चरण धो ले, इति क्षालित पादौ। भगवान के उसने दोनों चरण धोए और खूब मलमल के चरण धोए। फिर चरण धोने के बाद फिर वो उस आगे तीर पर ले गए। देखो इसमें ये नहीं आया है कि हम वो उसका चरण जो उन्होंने पी लिया, ऐसा नहीं आया इसमें। पर हमारे तुलसीदास जी महाराज तो भक्ति में ऐसे डूबे हुए, उनको चरण रस पिला दिया, तुलसीदास जी महाराज तो उस केवट के साथ स्वयं ही धन्य हो गए। अब वहां विदेह नगरी में पहुंचे, वहां ऋषियों का जहां समुदाय ठहरा हुआ था वहां पहुंच गए। वहां दशरथ जी के नहीं, जनक जी के लोगों को पता चला, उन्होंने जाकर जनक जी से निवेदन किया, जनक जी महाराज आए और जनक जी महाराज आकर के और विश्वामित्र जी की खूब पूजा किए। पूजा करते करते पूछते कसे तो ये दोनों बेटा किसके हैं, ये तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, कोई नरनारायण तो नहीं है ये। विश्वामित्र जी महाराज उत्तर देते हैं, ये दशरथ जी के बेटा है, राम लक्ष्मण इनका नाम है, मैंने यज्ञ की रक्षा के लिए इनको बुलाया था, आते हुए उन्होंने ताड़का को मार दिया, एक ऐसा कस के बाण लगाया सुबह वहां पर मारा गया और दूसरे बाण से मारीच को उन्होंने समुद्र की तरफ फेंक दिया। फिर उसके बाद हम लोग वहां से रवाना हुए तो गौतमी के आश्रम में पहुंचे, तो वहां शिला रूप से जो गौतम की वधू थी अहिल्या, उसका कल्याण हो गया। और फिर उस अहिल्या जी को प्रणाम करके, और अब आपके यहां तो आज एक विशेष काम से आए हैं। देखो हमारे वेदव्यास जी महाराज सीता का स्वयंवर नहीं रच रहे हैं, यहां स्वयंवर में नहीं आए, धनुष को देखने के लिए आए, वहां सीता स्वयंवर में आते हैं या नहीं आते। और यही वेदव्यास जी महाराज, यही वेदव्यास जी महाराज भागवत लिखते हैं जिसमें रामचरित्र लिखते हैं, वहां पर सीता स्वयंवर गृहे, सीता जी के स्वयंवर में आए। एक लेखक एक कथानक को भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत करता है, क्या बात है भाई। ये इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि ये कथाएं भगवान की अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये बताने के लिए बात है। तो खूब बढ़िया अच्छी तरह से जो है व्याख्या करते हुए विस्तार से सुनाते हैं, अहिल्या का उद्धार कर दिया और इदानीम दृष्टु कामस्ते गृहे माहेश्वरम धनु, घर के आपके घर के अंदर जो माहेश्वर धनुष है उसको देखने के लिए आए हैं। ओह तो दिखाओ आप, फिर हम हमारे अयोध्या चले जाएंगे, आपके धनुष का दर्शन करके अयोध्या चले जाएंगे। राजा ने, राजा बड़े खुश हो गए, ये विश्वामित्र जी बड़ी कृपा की आपने, तो जहां धनुष रखा है वहां ले जाएगी, यहां लाएगा, आपकी मर्जी, तो यही मंगा देते हैं तो यहां मंगा दो। जनक जी महाराज ने अपने सेवकों से कहा कि देखो भाई वो जो धनुष रखी हुई पेटी है ना, उस पेटी को लेकर आओ। तो वो धनुष की पेटी को लेने के लिए गए। इधर जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, एक बात है, यदि वो धनुष को देखने के बाद राम यदि उस धनुष की प्रत्यंचा को खींच करके और धनुष की डोरी पर कस देगा ना, तो मैं अपनी पुत्री सीता का इसके साथ विवाह कर दूंगा। तो साहब देखो महाराज, पहले धनुष को लाने दो, देखने दो, फिर राम देखेंगे, बिना देखे तो कैसे करें, अभी हम हां ना नहीं कर सकते। तो शीघ्रम दर्शय, जल्दी लाओ भाई। तो एक मंजूषा थी, मंजूषा कहते पेटी को, बहुत बड़ी पेटी, उसमें पहिए लगे हुए थे, पहिए लगे हुए और उसमें भी 5000 आदमी धक्का दे रहे हैं उसको, 5000 आदमी। अपना रेल का डिब्बा है उसको देखा है, पटरी पर एक आदमी दो आदमी धक्का देते हैं जिसमें गुड़क जाता है, वह पहिया लगा हुआ और 5000 आदमी धक्का दे रहे हैं उसको। और उसके सैकड़ों सैकड़ों घंटियां लगी हुई उस पेटी के मंजूषा के, और वो मणि वज्रादि भूषिता ऐसी जो है वो जो है पेटी का, अब जो है लाकर के धनुष दिखाया, वो पेटी का खोली धनुष दिखा, धनुष देखा राम जी ने, वो धनुष को यूं गौर से देखा, गौर से देख करके रब पेटी में हाथ दिया, हाथ दे करके उसको बाया हाथ से उठा लिया, यूं उठा दी दशरथ, ये जनक जी देखने लगे धनुष को, आज तक किसी ने उठाया नहीं, उठा लिया और उठाया, इतना ही नहीं ईषद आकर्ष है वहां से, वो डोरी थी, वो डोर को यूं थोड़ा सा खींचा तो उसे तड़ाक से धनुष टूट गया, लगा देखो यहां धनुष के ऊपर डोरी लगाने का ही काम था, इतने में ही देने के लिए राजी थे, और जगह तो धनुष को तोड़ने की बात थी, यहां केवल डोरी लगा इतने में ही तो टूट गया अपने आप। अब वो शब्द गया, क्या बताएं पार्वती, वो शब्द दिशाओं में विदिशाओं में स्वर्ग में मृत्युलोक में रसातल में पाताल में सब जगह वो धनुष के टूटने की आवाज गई। देवता लोग आकाश के अंदर इतने प्रसन्न हुए, खूब फूलों की वर्षा की, दुंदुभियां बजाई, अप्सराएं लोग नाचने लग गए और जो है बड़े आनंदित हुए। राजा जनक जी ने जाकर राम जी को यूं भुजाओं में ले लिया, भुजाओं में ले लिया और इतने खुश हुए और बड़ा आलिंगन किया और बहुत जो है प्रसन्नता से उन्होंने सीता जी को रत्न स्वर्णमयी माला लेकर के वहां पर उपस्थित किया, और फिर सीता जी ने बड़े प्रेम से उनके गले के अंदर जयमाला डाल दी। इस दृश्य को बड़े बड़े ऋषि मुनि और सब वहां पर बैठे हुए लोग और रानियां वगैरह सब झरोखों से देख रही थी। इधर जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, ध्यान से सुनना, विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र जी जल्दी कीजिए, राजा दशरथ को समाचार दीजिए, उनके पुत्र के विवाह की यहां हम तैयारियां करेंगे, वो अपने रानियों सहित यहां आए, मंत्रियों सहित यहां आए, क्या अच्छी बात है। तो राम जी महाराज के विवाह की बात वहां तक पहुंची, बड़े प्रसन्न हो गए, मिथिलाम गच्छन्तु सब मिथिला के लिए रवाना हो जाए, बड़ी भारी सेना लेकर के। और देखो आप बड़ा आश्चर्य करोगे हो, इसमें राम जी की माताएं सब जो है इस विवाह में जनक जी के यहां आई है, तुलसीदास जी महाराज के उसमें नहीं रहती है, लेकिन यहां राम जी की माताएं गई है। राम मात्री समादाय मुनिर्गे भगवान गुरु वशिष्ठ जी वगैरह सब गए, बड़ी भारी सेना है। सतानंद जी ने आगे जाकर उनका स्वागत किया, जनक जी ने स्वागत किया सतानंद जी साथ में, सब आपस में बड़े प्रेम से मिले। राम लक्ष्मण जी अपने पिताजी से मिले, दशरथ जी ने राम से कहा कि राम किस अवस्था में मैंने तुमको छोड़ा था और किस अवस्था में मैं तुमसे मिल रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं तो इतना आनंदित हो रहा हूँ, इस आनंद का कारण तो ये विश्वामित्र जी की कृपा ही है, उन्हीं की कृपा से सब हुआ है। बार बार राम का मस्तक सूंघते हैं और उनको ऐसा आनंद आया जैसे कोई ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही हो। जनकराज जी ने बड़ा सुंदर मंडप बनाया, उस मंडप के अंदर जो है राम जी महाराज सब भाई वगैरह बैठ गए, और जो है वहां सीता जी का वैदिक लोगों के द्वारा खूब अच्छे ढंग से विवाह किया गया। वशिष्ठ जी है, विश्वामित्र जी है, इधर सतानंद पुरोहित इनका बड़ा आदर करते हैं। वहां अग्नि को प्रज्वलित किया गया और जनक जी महाराज अपनी रानी सुनैना के साथ वहां उपस्थित होते हैं, राम जी के चरण धोते हैं, जिन चरणों के धूलि को ब्रह्मा जी अपने सिर पर धारण करते हैं, शंकर भगवान जिनको सदा चाहते रहते हैं वो धूलि उन्होंने स्वीकार की है, और उसके बाद राम जी महाराज के हाथ में उन्होंने सीता जी को दे दिया। ये सब करने के बाद फिर जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा कि साहब आपके तीन भाई और हैं, इधर तीन हमारे कन्याएं और हैं, एक हमारी दो भाई के, इनका भी विवाह कर दिया जाए। ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं। अब देखो क्या योग बैठता, एक ही भगवान एक ही दिन में अवतार लिए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का अवतार एक ही दिन हुआ था। अभी इसीलिए तो भगवान ने कहा उपजे एक संग सब भाई, हम एक ही दिन तो पैदा हुए, एक गुरु के पास पड़े और एक ही दिन हमारा विवाह हुआ, तो एक ही दिन में विवाह हुआ। यदि राम जी का विवाह यहाँ होता, दूसरों का विवाह होता अलग जगह, तो भाई ये राम जी की जो चार विभूतियां हैं, राम जी अपने चारों के साथ 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 रहे ना, ये सायुज्य टूट जाता। इसलिए कैसी सुंदर राम कथा है कि सीता जी का जहां विवाह हुआ वहीं पर इन दोनों का भी विवाह हो गया, तीनों का भी विवाह हो गया। तो उर्मिला उसका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ, और सुतकीर्ति और मांडवी जो उसके भाई की कन्याएं थी उनका भरत और शत्रुघ्न के साथ विवाह हुआ। सुतकीर्ति का तो जो है शत्रुघ्न के साथ, मांडवी का भरत जी के साथ, खूब आनंद ढंग से विवाह हो गया। अब खास बात यहां कहनी है, अब वो वहां तो इतनी खास नहीं थी, अब खास बात यहां बताते हैं। जनक जी ने वशिष्ठ जी को इनको बुलाया, विश्वामित्र जी को, आप दोनों अलग आइए, अलग बैठा करके कहा महाराज मेरे यहां एक दिन नारद जी आए थे, नारद जी ने हमको कुछ सुनाया था मेरी बेटी के विषय में, वो मैं आपको इस बेटी की उत्पत्ति के विषय में सुनाता हूं। मैं एक बार बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा था, इतना पवित्र यज्ञ, गोबर गोमूत्र से उस जगह को पवित्र करूंगा और अपने हाथ से उस जगह को पवित्र करूंगा, और उस भूमि को फिर मैंने हल के द्वारा जोत करके और पवित्र करना चाहा। तो जब मेरा हल जमीन के अंदर गया, आगे वो चल रहा था, हल चल रहा था, अकस्मात मेरा हल कहीं अटक गया। अटकने पर मैंने देखा कि यहाँ क्या अटका हुआ है, तो फिर मैंने जमीन हटाई तो एक मंजूषा मिली, पेटी, पेटिका में छोटी सी बच्ची मिली। तो फिर मैंने उसको गोद में ले लिया, मैं इतना प्रसन्न हुआ कि देखो मेरे कैसी दिव्य मुझे जो है ये पुत्री मिली है। मैं लेकर के अपने भारिया को दे दिया कि देखो भगवान की कृपा से हमको ये कन्या अनायास मिल गई। तो फिर बाद में मैंने उसका अपने कन्या को दे दिया। मैं सोचता रहा कि आखिर ये क्या हुआ, ये आखिर क्या हुआ। ये उस कन्या के विषय में एक दिन मैं बैठा बैठा खूब सोच रहा था, अकस्मात नारद जी आ गए। नारद जी वीणा बजाए, नारायण नारायण कीर्तन किया, मैंने खूब उनका आदर सत्कार किया, और उन्होंने कहा कि देखो जनक, आप जिस विषय का चिंतन करते हैं आप अपने चिंतन से वो तत्व नहीं प्राप्त कर सकोगे, मैं आपको सब बात सुनाता हूं। परब्रह्म परमात्मा ऋषिकेश भक्तों पर कृपा करने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए, रावण आदि दुष्टों का वध करने के लिए माया से मनुष्य बने हुए दशरथ जी के यहां पर अवतार ले चुके हैं, और उस अवतार में उन्होंने अपने चार स्वरूप बनाए हैं, एक स्वरूप अपने पास है, तीन स्वरूप और बनाए हैं, और उनकी एक योग माया है जो सदा तुम्हारे साथ ही साथ रहती थी, वो मौका देख रही थी कि किस रूप में मैं जनक से मिलूं, किस रूप में मिलूं। अतएव यदि जैसे राम ने अवतार लिया वैसे ही योग माया अवतार लेवे, तो योग माया में और राम जी में अंतर कैसे रहेगा, अंतर तो रहना चाहिए। यदि वो भी चतुर्धा होती, चतुर्भुज रूप वाली होती, वो भी तुम्हारे यहां जैसे राम जी कौशल्या जी के अवतार लिए ऐसे अवतार ली होती, तो योग माया में और राम जी में क्या अंतर रहा, भगवान में क्या अंतर रहा, कुछ तो वैशिष्ट्य भगवान में होना ही चाहिए। अतएव भगवान की जो योग माया है वो योग माया ही तुम्हारे साथ सदा अव्यक्त रूप से थी, कब प्रकट हूं कब प्रकट हूं। तब तुम्हारे अंदर ये शुभ संकल्प हुआ कि मुझे यज्ञ करना चाहिए, पवित्र काम करना चाहिए, उसमें जब तुम यज्ञ को चालू किए तो उसमें वहां पर मंजूषा के अंदर वो प्रकट हो गई। तुम्हारे पास जो सीता है, ये सीता केवल राम को ही देना, ये राम के अलावा सीता का कोई दूसरा अधिकारी नहीं है। न अन्येभ्य पूर्व भार्य ईसा, ये सदा ही राम जी की स्त्री रही है, किसी के पास जाने वाली भी नहीं है। और आप कभी ऐसा मत कर देना कि राम जी के अलावा किसी के पास चली जाए। तो मेरे मन में आया कि मैं दशरथ जी के पास कैसे जाऊं, और ये भी कह दिया कि ये बात गुप्त रखने की है, जब तक राम का विवाह न हो, सीता का विवाह न हो जाए राम के साथ, तब तक इस बात को प्रकट मत करना। तो मैं न तो किसी को बोल सकता, न दशरथ जी के पास जा सकता, न मैं कुछ कर सकता। मुझे तो जो है कुछ जो है पता ही नहीं चला था। ये बड़ी कृपा की विश्वामित्र जी महाराज आपने, तो तब से मैंने ये निश्चय कर लिया था कि ये सीता सीता नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। मया सीता विष्णु लक्ष्मीर विभाव्यते। मैं कैसे देवे कैसे देवे, ये तो एक तरह से ब्रह्मा जी की मेरे यहां धरोवर है, ऐसा समझ करके पाल रहा था। ये भगवान की बड़ी कृपा हो गई, इस धनुष यज्ञ को उठाने के बहाने से आज मेरा ये प्रण पूरा हो गया। अद्य में सफलम जन्म, आज मेरा जन्म सफल हो गया। सीता को आज राम के हाथ में सौंप दिया, ठीक हो गया। एकासनस्थम पश्यामि भाजमानम रविम यथा। मैं आज इतना प्रसन्न हुआ हूं, इतना प्रसन्न हुआ हूं कि जैसे सूर्य के समान देदीप्यमान और सीता के साथ एक आसन पर विराजमान आपको देखता हूं, तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। राम जी को देख करके बोलते हैं, आप ही के चरणों को बलि ने अपने सिर के ऊपर धारण किया था, तो आज बलि देखो क्या हो गया। आप ही के चरण धूलि को अभी अभी अहिल्या ने धारण किया, तो देखो अहिल्या का कल्याण हो गया। आपके चरण रज को तो बड़े बड़े योगी लोग अपने भावपास को दूर करने के लिए शस्त्र बनाए हुए हैं। हे प्रभु, आप हमारे पर कृपा करना और कृपा करके आप हमको संभालते रहना। इस प्रकार से खूब बड़े प्रेम भाव से वहां भगवान को अब विदा करते हैं। दीनाराणाम कोटि शतम, देखो 100 करोड़ तो उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं दी, 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। रथानाम अयुतम तदा, और जो है उन्होंने 10,000 रथ दिए और 10,00,000 घोड़े दिए और 600 उन्होंने हाथी दिए, 1,00,000 उन्होंने पैदल सेना दी, 300 उन्होंने दासियां दी। अब दिव्य हार है, वस्त्र है, इनके तो कोई गिनती कर ही नहीं सकता। इतना इतना सामान अपने पुत्री को जनक जी महाराज ने दिया। और फिर वहां से दशरथ जी महाराज विदा हो गए। विदा होते समय में सीता जी को उनके जो है मां ने ये कहा, श्वश्रू शुश्रूषण परा, देख बेटा अब तुम्हारा ये घर नहीं है, अब तुम्हारा घर ससुराल है, वहां अपने स्वास और ससुर की खूब सेवा करना। नित्यम रामम अनुव्रता, और नित्य है तुम राम जी की सेवा में लगी रहना, राम जी की खूब सेवा करना और जो है सास ससुर की सेवा करना, पातिव्रत्य धर्म का पालन करना। बस स्त्री के लिए ही सबसे बड़ी पूजा पाठ और जो है साधना तपस्या जो कुछ है यही है। घर में जाती है स्त्री सेवा करने के लिए जाती है, आज्ञा पालन करने के लिए, सास ससुर की आज्ञा का पालन करे, अपने द्वारा सास ससुर को कोई तकलीफ न हो ऐसा बर्ताव करें। कि क्या करें, सासू जी का स्वभाव अच्छा नहीं है तो करें, ये तो हमारी सेवा को और ज्यादा मजबूत करने वाली चीज मिल गई। यदि सासू जी खूब बड़ाई करने लग जाएंगे तो आपकी सेवा का फल कम हो जाएगा। आप खूब सेवा करती हो और सास ससुर आपके सेवा से खुश नहीं होते हैं, आप तो सच्चे मन सेवा करते हो और वो खुश नहीं होते हो, तो उस समय आपको बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि बड़ा अच्छा हुआ, हमारी सेवा सुरक्षित रह गई। देखो आप लोग जानते होंगे खेत के अंदर खेती होती है तब बाड़ होती है, वो फूलों की नहीं लगाई जाती है, चारों तरफ फूलों की बाड़ लगाओ, फूलों की बाड़ नहीं लगाते, कांटों की बाड़ लगाते हैं। कांटों की बाड़ क्यों लगाते हैं कि कांटों की बाड़ से रक्षा होती है, यदि फूलों की बाड़ लगा देंगे तो वहां पर फूल खाने के लिए गाय आ जाएंगी, दूसरे जानवर आ जाएंगे और खेती को नुकसान कर देंगे। ऐसे ही हम जो सेवा रूप तपस्या कर रहे हैं घर गृहस्थ में रहते हुए, उसमें कोई हमें ताना मार के बोलता है, कोई टेढ़ा बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई निरादर करता है, अपने से बड़े बोल सकते हैं भाई, यदि वो ऐसा बोलते हो तो उसको बड़े प्रेम से ये मान करके कि ये मेरी सेवा की आड़ है, ये कांटों की बाड़ है, इसमें मेरी सेवा सुरक्षित रहेगी, ऐसा करके और सहन करना चाहिए। स्वस्तु सुसु सणपरा नित्यम राम मनुव्रता पाति व्रत्यम उपालंब्य तिष्ठ वत्से यथा सुखम। प्रयाण काले रघुनंदनस्य, जिस समय ये चल रहे थे उस समय सब लोग बड़े आनंद से वहां से रवाना हो गए। ये या जो है जनकपुर से मिथिलापुर से रवाना हुए और अब वो जंगल के अंदर पहुंच गए। जनक जी महाराज ने बहुत दूर तक उनको विदा दे दी। अब जनक जी महाराज तो अपने वापिस आ गए और वो आगे अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण के सब रक्ष मां। राम राघव पाहि मां, राम राघव पाहि मां, कृष्ण के सब रक्ष मां, कृष्ण के सब रक्ष मां। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। देखो राम कथा होती है।